सर्दी के आने की आहट के साथ ही खांसी जुकाम फ्लू की तरफ ध्यान जाने लगता है और फ्लू वैक्सीन की भी बात होती है। अब ये तो हम जानते ही हैं कि फ्लू एक संक्रामक सांस की बीमारी है और इसका वायरस नाक, गले और कभी कभी फेफड़ों को संक्रमित करता है। ये कान के संक्रमण या बैक्टीरिया निमोनिया जैसी जटिलताओं को भी जन्म दे सकता है। कभी कभी तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ जा सकता है और यहाँ तक कि ये मृत्यु का कारण बन सकता है। इधर COVID-19 भी हमारे साथ साथ चल रहा है, तो आज बात की है सिडनी स्थित डॉक्टर रंजू अग्रवाल के साथ, जो फैकल्टी बोर्ड मेंबर रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर और नीपियन जीपी नेटवर्क की चेयर और डायरेक्टर हैं। उनसे पूछा कि चाहे वायरस तो अलग अलग हैं, लेकिन मोटे तौर पर COVID-19, आम सर्दी जुकाम और फ्लू के लक्षण तो एक से ही महसूस होते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, तो वो बताती हैं।
अनीता जी, ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कई बार ऐसे लगता है कि हर खांसी जुकाम फ्लू है, पर फ्लू जो है खांसी जुकाम से, जो सिंपल खांसी जुकाम है, उससे थोड़ा सा इंटेंस ज्यादा होता है और अब्रप्ट उसकी शुरुआत होती है। तो अगर खांसी जुकाम और बॉडी एक शुरू होते हैं, तो अभी कोविड का तो मौसम चल ही रहा है, तो सबसे पहले तो हम एडवाइस करते हैं कि कोविड को अलग रूल आउट कर दें, तो रैपिड टेस्ट करें, अगर वो नेगेटिव है तो आइसोलेट करें 24 घंटे और एक बार दोबारा करें, और अगर वो फिर भी नेगेटिव है तो फिर हम देखते हैं कि ये फ्लू है या कॉमन कोल्ड है। तो जैसा हम बात कर रहे थे कि जो फ्लू होता है उसमें बॉडी एक ज्यादा होती है, बुखार भी हो सकता है और चिल्स होती हैं और एकदम से शुरू हो जाती हैं ये। और खांसी जुकाम जो होता है वो अक्सर माइल्ड होता है, जैसे कि रनी नोज, ब्लॉक नोज, बिट ऑफ सोर थ्रोट। तो जो कॉमन कोल्ड होता है वो माइल्ड होता है, और वो जो है अक्सर जो है जो रेस्पिरेटरी वायरस हैं, जैसे राइनो वायरस, कई तरह के हैं, वो उनसे होता है। जबकि फ्लू जो है वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस से, और जो कॉमन वायरस हैं वो है इन्फ्लुएंजा, आजकल जो है वो है ए और इन्फ्लुएंजा बी। और आजकल आपने सुना होगा स्पेशली बच्चे बहुत एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल में इन्फ्लुएंजा से, तो इन्फ्लुएंजा की जी कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है, जैसे कि निमोनिया, हॉस्पिटल। तो फ्लू जो है थोड़ा सा इंटेंस होता है कॉमन कोल्ड से,
क्योंकि ये थोड़ा लंग्स को भी, हमारे लंग्स को अधिक प्रभाव डाल देता है।
बिल्कुल जी, बिल्कुल, इससे निमोनिया हो सकता है और इससे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है। बिल्कुल
जी, अभी आपने बात की शुरुआत में कोविड की बात की, और जो पिछला साल था वो तो शायद पता ही नहीं चला कि कोविड है कि फ्लू है, शायद ऐसे कह सकते हैं, और सुनने में भी नहीं आया कि फ्लू हुआ है। तो अब फ्लू के लिए एक सलाह होती है कि हर साल वैक्सीन ले लिया जाए।
बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अगर आप नंबर्स की बात करते हैं तो आपको बताते हैं हम कि 2019 में जी, जो पहले सीजन था, कोविड आने से पहले सीजन था, उसमें हम फ्लू के बारे में बहुत सुनते थे। और 2019 में जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें जो लैब आइडेंटिफाइड केसेस थे वो थे 313,000, और जो डेथ्स थी वो थी एक साल में 953 डेथ्स थी। पर अगर आप कंपेयर करें इसको कोविड सीजन से, तो 2020 में एक भी फ्लू से डेथ नहीं थी। और जो इन्फेक्शन रेट था, जो लैब डायग्नोज इन्फेक्शन थे, वो बहुत कम थे। तो ऐसा इसलिए था अनीता जी, हम जानते हैं कि अगर हम रेस्पिरेटरी वायरसेस में, जो कि ड्रॉपलेट से होते हैं, एयरबॉर्न इन्फेक्शन होते हैं जैसा हम सब जानते हैं, तो उसमें अगर हम कॉमन हाइजीन करें, हेल्थ हाइजीन यूज करें, जैसे वॉशिंग हैंड्स, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज करना, जो कि हम सब करते थे कोविड में, तो उससे हमें फायदा हुआ कि फ्लू कम हो गया। तो पर अब जो है सनीता जी, इसके दो कारण हैं कि इस साल जो है हमारी नेशनल हेल्थ लाइन जो है वो कह रहे हैं कि इस साल फ्लू आएगा, और इसका कारण ये प्रिडिक्टेड है अनीता जी कि एक तो आप जैसे हम सब जानते हैं कि बॉर्डर्स खुल गए हैं, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बॉर्डर्स, तो लोगों का मिलना जुलना शुरू हो गया है, और कम्युनिटी इन्फेक्शन जो है, जो कि पहले कम था, उससे इम्यूनिटी कम हो गई है, क्योंकि वायरस कम था, फ्लू वैक्सीन नहीं ली, तो लोगों का जो कम्युनिटी इन्फेक्शन लेवल है वो कम हो गया है, इसलिए प्रिडिक्शन है कि इस साल फ्लू आएगा। तो इसीलिए जो है कह रहे हैं इसकी वैक्सीन जरूर लेने चाहिए, इस साल फ्लू की वैक्सीन, इसलिए ये रिकमेंडेशन है अनिता जी।
जी, तो वैक्सीन तो है और उसके अलावा किस तरह से बचा जा सकता है वो भी आपने बताया कि हमें अपने सफाई की तरफ, पर्सनल हाइजीन की तरफ और अधिक सचेत रहना चाहिए, हाथों को धोते रहना चाहिए, और अगर कोई बीमार है तो वो जो डिस्टेंस मेंटेन करने वाली बात है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं ना छोटे, उनको बहुत जल्दी वो कैच कर जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात ये भी पूछना चाहूँगी कि वैक्सीन की तो बात आती है, एंटीबायोटिक दवाओं से तो फ्लू का इलाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बात ऐसी होती है कि कहीं इसकी गुंजाइश हो जाए और कुछ राहत दे दें, या एंटीबायोटिक लेने से हम जल्दी ठीक हो सकते हैं हम क्या?
अनीता जी, ये बिल्कुल कॉमन बिलीफ है कि जरा सा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन शुरू हुआ, चाहे वो जुकाम हो या खांसी हो, ऐसा लगता है कि फट से जल्दी एंटीबायोटिक शुरू कर लें ताकि वी कैन गेट ऑन टॉप ऑफ इट। पर जैसा हम सब जानते हैं कि जो जो फ्लू है वो होता है इन्फ्लुएंजा ए या बी से, और जो कॉमन कोल्ड होता है वो है बाकी वायरस से, जैसे राइनो वायरस वगैरह है
जी।
तो इसमें जो है जो मोस्टली ट्रीटमेंट एडवाइस होती है वो होती है कि रेस्ट करिए और फ्लूड्स लीजिए, थोड़ा बहुत वाइटामिन सी लीजिए, फ्रेश फ्रूट खाइए, और कई बार थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी दी जाती हैं जैसे कि यू नो कोल्ड और फ्लू टैबलेट। मेनली उनका रोल होता है बॉडी एक और टेम्परेचर के लिए, उसको कोई इन्फ्लुएंजा वायरस को ट्रीट नहीं करती हैं, और इसमें एंटीबायोटिक का रोल बिल्कुल नहीं है क्योंकि फ्लू जैसे वायरस है जैसा आप कह रहे हैं और जैसा हम सब जानते हैं
जी।
एक चीज और मैं कहूंगी इसके साथ साथ कि जैसा आप कह रहे थे कि इसको प्रिवेंशन के लिए हेल्थ हाइजीन वगैरह तो अगर हम यूज करते रहें जैसे हम कोविड में करते थे, और प्लस हम हेल्दी डाइट लें, गुड स्लीप, जैसे कि हर चीज की हेल्थ यू नो प्रिवेंशन है, गुड स्लीप 7 to 9 hours की अगर हो सके तो, और डेली एक्सरसाइज करें, तो हमारी इम्यूनिटी जो लेवल है वो रहेगी, और हो सकता है कि हम इतना फ्लू इस साल ना हो जैसा कि हम चाहते हैं।
जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समझ लेना कि एक तो कोल्ड, कॉमन कोल्ड और फ्लू के अंदर जो फर्क है उसको भी पहचान लेना, और जैसे आपने शुरू में ही बता दिया हमें कि वैक्सीन लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल अनीता जी, वैक्सीन के बारे में हम एक आध बात श्रोताओं को बताएंगे कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि फ्लू को जो वैक्सीन है वो एनुअल होती है क्योंकि जो स्ट्रेन है उसके चेंज होते रहते हैं, तो वो जो वैक्सीन आती है वो हर साल नए स्ट्रेन के हिसाब से आती है, और इस साल की जो वैक्सीन है वो क्वाड्रीवेलेंट है, उसमें 2A है और 2B स्ट्रेन है।
अच्छा।
तो इट्स रियली गुड वैक्सीन, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्लू सीजन जो होता है वो होता है जून टू सितंबर में, तो इसलिए एडवाइस होती है कि वैक्सीन फ्लू सीजन के शुरू होने से पहले ले ली जाए, जबकि अब है जो कि अप्रैल और मई में है, और ये कोई भी ले सकता है, 6 महीने के बाद की उम्र का बच्चे से लेके बड़े तक कोई भी फ्लू वैक्सीन ले सकता है
जी।
और जो कुछ कुछ ग्रुप्स हैं जो कि गवर्नमेंट फंडेड भी हैं जिनको कि फ्री फ्लू वैक्सीन मिलती है, जैसे कि प्रेग्नेंट वीमेन हैं, 65 ईयर से अबव हैं, या किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है, या जो बच्चे हैं 6 महीने से 5 साल के, और जैसे कि लोग हैं एबोरिजिनल टॉरेस स्ट्रेट आइलैंड पीपल 6 मंथ एंड अबव, सो वो उनको गवर्नमेंट फंडेड वैक्सीन मिलती है, तो और ये जितनी जल्दी हो सके लोग लगवा लें तो अच्छा रहेगा। और एक बात हम और बताएंगे श्रोताओं को कि दूसरा ये है कि जो कोविड वैक्सीन है, कोविड बूस्टर है और फ्लू, वो दोनों इकट्ठे भी लगवा सकते हैं।
जी, बस मैं आपसे यही पूछने जा रही थी क्योंकि कई लोग इस समय कोविड बूस्टर की कतार में भी लगे हुए हैं, तो दोनों इकट्ठे लिए जा सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन में दोनों लिए जा सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो एक राइट आर्म में लगवा लीजिए, एक लेफ्ट आर्म में, और वो दोनों एक दिन लग सकते हैं। बिल्कुल,
ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि पिछले साल तक तो कुछ उसमें संशय रहा था
कि दोनों इकट्ठे जाएं या ना जाएं, और अब उसके प्रति पूरी तरह से जो भी रिसर्च डेटा से कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, दोनों को इकट्ठा लगवाया जा सकता है, तो टालने की आवश्यकता नहीं है।
बिल्कुल अनीता जी, कोई
जी
टालने की आवश्यकता नहीं है, और जितनी जल्दी हो सके ये एडवाइस है कि लोग लगवा लें अप्रैल और मैक्सिमम मई में।
जी डॉक्टर अंजू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने ये जानकारी दी है। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद अनीता जी, और धन्यवाद हमारे सब श्रोताओं का। तो हेल्दी रहिए और प्रिकॉशन यूज करिए और अपना फ्लू का टीका लगवा लीजिए। थैंक यू।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।